मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 25 अप्रैल 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने 21 अक्टूबर से 4 नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दीपक कुमार, आप कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, शुभम कुमार, आप देवगलपुर ये गांव है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो दीपक और शुभम आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में हम लोग स्थानीय स्वशासन पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इस विषय पर सीधे सीधे आपसे कोई बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि मैं इस एंगल से बात करूंगा कि इस तरह के टॉपिक्स की परीक्षा के किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, राइट फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले हम कुछ न्यूज देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आप जो पहली खबर थी उसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी, वो प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट है जिसे मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, सार आपके सामने रख रहा हूं। उनका कहना यह था कि हमारे देश की जो मूलभूत समस्या है, हालांकि ठीक है वो ग्राम स्वराज्य या कह लीजिए पंचायतों के संदर्भ में वो बात कह रहे थे, लेकिन कहने का मतलब यह था कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है नीतियों को लागू करने का। दो बातें उन्होंने कही, न तो नीतियों की कमी है या कह लीजिए कि कार्यक्रमों की कमी है, प्रोग्राम्स बहुत हैं, और न ही धन की कमी, बजट की भी कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि पहली बार शायद सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि धन की कमी नहीं है। इससे पहले तो मैं मित्रों, इससे पहले मतलब अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ और साल पीछे चले जाइए आप, हमेशा एक बात कही जाती थी कि धन की बहुत कमी है, धन की बहुत कमी है, कैसे विकास हो, कैसे विकास हो, कैसे ये काम किया जाए। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नो, बजट इज नॉट ए प्रॉब्लम, धन की कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, यानी कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो प्रोग्राम लागू किए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से जमीनी हकीकत नहीं हो पा रहे हैं। नीति बन गई, उसके लिए आवंट धन भी दे दिया गया, लेकिन वो उस तरीके से जमीन पर उतर नहीं पा रहे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद आ रहा है कि 2013 या 2014 में सिविल सर्विस के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वह क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के ऊपर था, समन्वय के ऊपर था, कि समन्वय की कमी के कारण सही मायने में भारतीय गांव या शहरों का विकास नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन। अब यहां हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात उन्होंने कही। मुझे लगता है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मित्रों, इस पर आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और अगर कल कोई बहुत जरूरी विषय सामने नहीं आया तो फिर इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि कल क्या खबरें और होंगी, उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, देखिए वह है एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट है नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ हैं, अमिताभ कांत जी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने देश के उत्तर और पूर्व के कुछ राज्यों के बारे में ये कहा है कि उसके कारण हमारा देश पिछड़ा हुआ है, उसके कारण हमारा देश पिछड़ा हुआ है, और यही कारण है कि हम 188 देशों में 133वें पायदान पर हैं। स्पेशली तीन राज्य इसमें हैं मित्रों, वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी, सॉरी राजस्थान भी है, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान, चार राज्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस पर दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट है, वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और मैं इस कमेंट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं एडिटोरियल कमेंट की, कि इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और बहुत खूबसूरत पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो छोटा सा है या बड़ा सा है ना, वो 400 शब्दों का है या 4000 शब्दों का है, नॉट एट ऑल। सवाल यह है कि आप उसमें से अपने लिए क्या निकाल पाते हैं। अगर आप इस छोटे से एडिटोरियल से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे इस तथ्य की जांच करने के लिए जो अमिताभ कांत जी ने कहा है, तो आपको बहुत से पॉइंट मिलेंगे कि वो क्यों ये बात कह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण, आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। या तो आप जस्टिफाई कीजिए या आप उसका खंडन कीजिए, दो में से एक करेंगे। इसमें उसको जस्टिफाई किया गया है क्योंकि सच तो है, सच को दिखाने के लिए हमारे पास डेटा है। आप इन चारों राज्यों के डेटा उठा करके देख लीजिए, चाहे व्यक्तिगत आय देख लीजिए, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, चाहे मोर्टिलिटी रेट देख लीजिए, कुपोषण की संख्या देख लीजिए, आपको सब में ये पीछे मिलेंगे। चाहे लिटरेसी देख लीजिए, यही तो विकास के दरें होती हैं, आप जिसके आधार पर आप विकास के लेवल को आप माप सकते हैं, इन सब में नीचे है। उसके पीछे कारण क्या है? कुछ ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं, कुछ सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। मित्रों, ये बहुत खूबसूरत टुकड़ा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें से पॉइंट्स निकालें और अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें या उन पॉइंट्स को एलोबरेट करने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मुझे याद है कि 1984-85 में भी ये मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा था, जिसकी चर्चा मैंने शायद किसी इससे पहले के डेली ऑडियो लेक्चर में की है। उस समय इसको लेकर के बवाल मचा था देश में कि ये जो उत्तर के राज्य हैं या उत्तर पूर्व किस तरह के जो राज्य हैं उनके खिलाफ कोई बात भड़काई जा रही है, तो लोगों ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया था। लेकिन मित्रों, जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है, तो हमें बहुत संतुलित तरीके से और बहुत ही तार्किक तरीके से उन पर विचार करना चाहिए। और अगर वो गलत है तो बिल्कुल आप अपनी बात रखिए कि देखिए ये चीज है हमारे यहां, ये बड़ी चीज है, ये है, आप कैसे कह सकते हैं, और यही तो डेमोक्रेसी है और यही बौद्धिकता भी है। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप इसको देखें। और इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट जो खबर है, अखबारों में उसकी चर्चा नहीं है लेकिन डीडी न्यूज में उसको दिखा रहे थे, और वो ये है कि पिछले कुछ सालों से जो नक्सली गतिविधियां हैं उनमें कमी आई है। कुछ जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से मुक्त कर दिया गया है, और साथ ही साथ कल जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, AFSPA जो एक्ट उठा लिया गया है कुछ राज्यों में, आपको मालूम है कि मेघालय में उठा लिया गया है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से वहां भी उठा लिया गया है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AF आर्म्ड फोर्स SP स्पेशल पावर ए एक्ट, ये उठा लिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि नहीं, जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, चाहे उग्रता से संबंधित हो या नक्सलवादी गतिविधियां हो या इंसर्जेंसी हो, खासकर बॉर्डर एरियाज में, उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है, मतलब या कह लीजिए कि स्थितियां बेहतर हुई हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। और आप जानते हैं कि आंतरिक सुरक्षा आपके सिलेबस में है, और हर साल कम से कम एक और अधिकतम तीन प्रश्न आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इस पर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है। देखिए, मुख्य विषय पर मैं इस रूप में आज आपसे चर्चा करूंगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट इस मायने में केवल होता है कि वह आपको एक दिशा बोध करा देता है, या कह लीजिए कि एक हाईवे प्रदान कर देता है, रास्ता कि इस रास्ते पर चलिए। एक रास्ता आपको मिल गया, नेशनल हाईवे 39 आपको मिल गया, यानी कि टॉपिक मिल गया। लेकिन उस वो जो नेशनल हाईवे है उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टेट हाईवे निकलते हैं, तो आपको देखना यह है कि आपको जाना कहां है। अगर आप केवल अपने को टॉपिक तक सीमित रख लेंगे तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आपको जो स्टेट हाईवेज हैं या उनसे जो छोटे रास्ते निकले या यू कह लीजिए जो पगडंडियां निकल रही हैं, आपको उस पर ध्यान देना होगा, तब आप सिविल सर्विस के हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। देखिए, जो स्थानीय स्वशासन की मैंने बात की, बट नेचुरल है कि इसका संबंध पंचायती राज्य से है, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सिविल सर्विस में पंचायती राज पर सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे? नॉट एट ऑल। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात यह ध्यान में रखनी होगी कि उस तरह के प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं करंट से जुड़े हुए हों, पहली बात। दूसरी बात, वो इस तरीके के प्रश्न होंगे जिसमें आपकी मौलिकता, व्यावहारिक बुद्धि, एनालिसिस पावर, आपकी समझ, आपकी अलर्टनेस, इन सबको वो चेक कर सके। तो आपसे सीधे सीधे पंचायती राज्यों की विशेषता बताइए, सिद्ध कीजिए कि पंचायती राज डेमोक्रेसी की पाठशाला होती हैं, ये कम से कम आप सिविल सर्विस से उम्मीद नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ 2017 मेंस, उसके कुछ प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं। तो देखिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जब तक आप किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर लगातार इनको दोहराएंगे नहीं, इन पर लगातार ध्यान नहीं देंगे, तो मान करके चलिए कि आप यह भी अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकेंगे तो मानकर चलिए कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ये दृष्टि देने के लिए या उस पगडंडी का रास्ता दिखाने के लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पढ़ रहा हूं, और ये 2017 के जो लेटेस्ट है। अब आप देखिए कि पहला प्रश्न क्या है। सेकेंड पेपर का प्रश्न है, जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर वर्ष 2017। पहला ही प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, इन्वर्टेड क्लोज, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। Critically examine the statement and give your views to improve the situation। 150 शब्द। अब आप देखिए कि किस तरीके से पूछा आपके पंचायती राज्य से ही गया हुआ है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और इसमें आपको कहीं ना कहीं जो डिफरेंट तरीका होता है उसमें जो उस समय किसी तथ्य की चर्चा होती है, कुछ और इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, उसको आधार बनाकर मित्र वो प्रश्न करते हैं। इन तथ्यों को आपको ध्यान दे रखना होगा, तब जाकर के आप सही तैयारी कर पाएंगे। 2017 में ही देखिए, फिर मैं आपको एक प्रश्न सुना रहा हूं जो इसी पेपर से, सेकेंड पेपर से है। आपको सीधे सीधे इसमें स्थानीय स्वशासन दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह भी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। और क्यों यह स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको कल डीडी न्यूज की याद दिलाना चाहूंगा। डीडी न्यूज में इस पर बात की गई थी, स्थानीय स्वशासन पर, पंचायती और जो राज्य को लेकर के, और उसमें एडिशनल सेक्रेटरी आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी। तो प्रश्न किया जा रहा था पंचायती राज्य पर, और उसके दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की भी बात की थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बात की थी कि हमारे पास इतने आज स्वयं सहायता समूह है, लगभग 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह है, और उसके 12 करोड़ लगभग महिलाएं उसकी मेंबर हैं। तो याद रखिए कि ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाता है, ये कोई अलग से नहीं है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके अलग से टॉपिक है वो। तो आपको जो स्थानीय स्वशासन है उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके भी देखना होगा। देखिए, एक अंतिम प्रश्न मैं आपको पढ़ रहा हूं। महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, ये सार्वजनिक स्थल कौन सा है? ये पंचायत है, वो पंचायत जहां महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, पंच के रूप में भी और सरपंच के रूप में भी। और निजी स्थलों, ये आपके स्वयं सहायता समूह है, सार्वजनिक भी है और निजी भी है। महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। इज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एबल टू स्ट्रेटजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम्स दैट वीमेन फेस एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये 250 शब्दों में आपको देना है। मित्रों, केवल मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि टॉपिक और टॉपिक की तैयारी करने की रणनीति दोनों में फर्क होता है और आपको इस फर्क को समझना चाहिए। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत से लोगों ने मेल लिखे हैं, लेकिन मैं एक ही उसमें से मेल लिखने वाले मित्र का नाम यहां ले रहा हूं और वो हैं राहुल मुछाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।